आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
नमस्कार, 2 फरवरी है आज, दिन है मंगलवार और शाम का खबरनामा दिन भर लेकर आ गया हूं मैं अमन गुप्ता। हेल्थ सेक्टर को दिए गए बजट में आंकड़ों की तस्वीर क्या कहती है? क्या वाकई बढ़ा है या कहीं कटौती भी हुई है? गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर लगाए गए कील कांटों को लेकर किसान नेताओं का क्या कहना है? और चक्का जाम करने से आम आदमी को मुश्किल तो होगी ही, तो क्या किसान रणनीति में बदलाव कर रहे हैं? और तीसरी खबर में बात होगी बंगाल में रथ यात्रा निकालने जा रही बीजेपी की तैयारियों की, तो क्या इस बार तृणमूल सरकार इसकी इजाजत देगी, और नहीं देगी तो क्या करेगी बीजेपी? और आखिर में बताएंगे ऐसे बैंक के बारे में जहां आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी बकरियां। लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, लेकर आई हैं श्रुतिका।
सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी जो 11 जून तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तेजस लाइट कॉम्बैट विमान की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली में स्थित इसराइल दूतावास के पास बीते दिनों जो धमाका हुआ उसकी जांच अब एनआईए करेगी। अभी तक इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया को आज कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि उनकी रिहाई अभी नहीं हुई है, आज शाम या कल सुबह तक रिहाई की उम्मीद है। अदालत ने 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है। भारत में कोरोना के नए मामलों और इसके कारण होने वाली मौतों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,635 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 2 जून के बाद सबसे कम है, और 94 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 13,423 मरीज ठीक हुए हैं। यूपी सरकार इस वर्ष चौरी चौरा की घटना का शताब्दी समारोह मना रही है। पीएम मोदी 4 फरवरी को इस ऐतिहासिक शताब्दी समारोह का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 1922 में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने चौरी चौरा में पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने कैलिफोर्निया के एक शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने की घटना की निंदा की। हाल ही में उपद्रवियों ने गांधी की उस प्रतिमा को तोड़ा जिसे 2016 में भारत सरकार ने डेविस शहर को उपहार के रूप में दी थी। और ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बीच कलाई की चोट के कारण भारत लौटने वाले भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने फिटनेस हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि वो इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए तैयार हैं।
किसानों के आंदोलन पर सड़क से संसद तक हंगामा बरपा है। बजट सत्र शुरू होते ही कृषि कानूनों और किसानों की मांगों पर सरकार को विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार हुआ। दूसरे दिन यानी कल बजट पेश करने के दौरान संसद में नारेबाजी हुई और आज तीसरे दिन भी विरोध हो हल्ला जारी रहा।
To have the discussion on President's address tomorrow, even the Business Advisory Committee also has been informed. So as we are going to discuss the President's address tomorrow as the first item, members can avail this opportunity and then participate and express their viewpoints. That's why I am not able to accept the notice given to suspend the business of the house.
I would only like to submit, sir. They have given the
Parliamentary Affairs Minister.
They have given the notice under 267, and you have given the ruling. And after walking out.
इस हंगामे के बीच विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए और पहले 10:30 बजे तक, फिर 11:30 बजे तक और फिर 12:30 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सांसदों के वॉकआउट करने की वजह पहले ये बताई जा रही थी कि सभापति महोदय यानी एम वेंकैया नायडू ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने को कल पर टाल दिया था, लेकिन बाद में वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐसा कहना गलत है और रिकॉर्ड के अनुसार सदन में कृषि कानूनों पर चर्चा हुई और 4 घंटे चर्चा हुई। तो संसद में तो चर्चा हो ही रही थी, दिल्ली हाईकोर्ट में भी किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन यहां सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता के वकील ही समय से नहीं पहुंचे। 10 मिनट तक उनका इंतजार किया गया और इसके बाद अदालत ने सुनवाई को 4 फरवरी तक टाल दिया है। उधर किसानों को दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर डटे हुए 69 दिन हो गए हैं। सरकार और किसान कोई नरम नहीं होना चाहता। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो आज साफ भी कर दिया है कि आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। हालांकि इस बीच सरकार से बातचीत चलती रहेगी, ये भी उन्होंने कहा है। उनसे मिलने आज संजय राउत समेत 6 शिवसेना सांसद भी पहुंचे और संजय राउत से जिस तरह टिकैत गलबहियां कर रहे थे, उससे अब ये भी साफ हो रहा है कि किसानों के आंदोलन में राजनीतिक रंग भी गाढ़ा होता जा रहा है। और सरकार की शह पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जिस तरह गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर किलेबंदी की है, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो तनाव के हालातों में ये दुश्मन राष्ट्र से लगती सीमा का हाल हो। भारी मात्रा में सुरक्षा बल, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, दीवारें बना दी गई हैं, सड़कें खोदकर कीलें गाड़ दी गई हैं। तस्वीरें आपने देखी ही होंगी। राहुल गांधी ने भी इन तस्वीरों को ट्वीट किया है और लिखा है, भारत सरकार पुल बनाइए, दीवारें नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ये कहते हैं कि पुलिस ने ये कीलें लोगों के रास्ते में लगाई हैं क्योंकि उन्हें तो दिल्ली जाना ही नहीं है।
हमें दिल्ली जाना ही नहीं, ये तो जनता के रास्ते में कील लगाई उन्होंने कि जनता ना जा सके। हम तो 2 महीने से बैठे हैं वहां पे, तो रास्ते तो खुले हुए हैं ना, जा सकता है पब्लिक उसी रास्ते पे, क्यों बंद कर रहे हैं उन रास्ते को? जितने जनता के रास्ते बंद होंगे, जनता को सब पता के कौन बोल नहीं रहे, पता सबको।
तो ये थे किसानों के नेता राकेश टिकैत। लेकिन किसानों की जो अगली तैयारी है वो आम आदमियों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। दरअसल 6 फरवरी को उनकी योजना चक्का जाम करने की है, तो अब तक किसान ऐसी चीजें करने से बचते रहे क्योंकि इस तरह से आम आदमी को परेशानी होगी। तो क्या किसान अब रणनीति बदल रहे हैं? यही पूछा मैंने आज तक रेडियो के रिपोर्टर कुमार कुणाल से।
किसान नेताओं से जो हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि आम लोगों को दिक्कत इससे हो रही है और जिन सड़कों पर वो पहले बैठे हुए थे उसी तरीके से अब भी बैठे हुए हैं। इसीलिए जो अतिरिक्त सड़कों को रोका गया है आवाजाही के लिए, वो बिल्कुल गलत है और पुलिस को इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो ये किसान नेताओं का कहना है कि जानबूझ करके लोगों को परेशान करने के लिए दिल्ली पुलिस ऐसी कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि चूंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन को उग्र रूप दिया और जिस तरीके की हिंसा हुई, इसीलिए पुलिस जो ये कार्रवाई कर रही है वो एहतियातन है और उसी तरीके की कोई और हिंसा आने वाले दिनों में नहीं हो, क्योंकि संसद भी अभी उसका भी सत्र चल रहा है, तो उसको देखते हुए ये पूरी कार्रवाई की गई है जिसमें कई लेयर की सुरक्षा और कई सड़कों को बंद किया गया है।
अच्छा कुमार, पुलिस की जिस तरह से किलाबंदी हुई है उसको लेकर किसान नेता किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं?
देखिए, चक्का जाम पर भी हमने किसान नेताओं से बातचीत की थी, तो उनका ये कहना था कि चक्का जाम करने की जो रणनीति है वो जानबूझकर इसलिए शनिवार को रखी गई है ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो और वक्त भी ऐसा चुना गया है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिस समय आम तौर पर ना तो ऑफिस जाने वाले और ना ही और किसी जगह पर जाने वाले सड़कों पर होते हैं। तो ये जो समय और तारीख तय की गई है वो सरकार को एक तरीके से मैसेज देने के लिए ज्यादा है और साथ ही साथ गांव में जहां पर लोग 12 बजे तक काम खत्म कर लेते हैं, तो ऐसे जगहों पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये वक्त रखा गया है 12 बजे से 3 बजे तक का, ताकि आंदोलन भी चलता रहे और लोगों को भी कम से कम परेशानी हो।
एक और सवाल कुमार आपसे करना चाहूंगा कि टिकैत कह रहे हैं कि बातचीत होती रहेगी, सरकार भी कह रही है, लेकिन कोई आगे बढ़ता नहीं दिख रहा, तो क्या सुलह के बीच भी कील कांटे आ गए हैं?
बिल्कुल कांटे हैं, और जो जिस तरीके से अब किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, ऐसा कहना है किसान संगठनों का कि ऐसे 83 मामले हैं जो कि दर्ज किए गए हैं, सरकार पहले उन्हें वापस ले और तभी सुलह का रास्ता खुल सकता है। साथ ही साथ जो सरकार ने भी यही कहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये साफ तौर पर कहा गया था कि एक फोन कॉल दूर है और बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन वहीं जिस तरीके से पुलिस ने लगातार अपनी सुरक्षा घेरेबंदी को बढ़ाया है और ज्यादा सख्त कर दिया है, अपने जो सुरक्षा का ही घेरा नहीं है बल्कि बाकी जो तमाम लोगों का मूवमेंट है उसको भी रोका गया है, तो उससे भी आशंकित है किसान यूनियन की। दोनों तरफ से बात तो हो रही है कि बातचीत के लिए हमें एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, लेकिन जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की बात है वो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती है, ना ही सरकार की तरफ से और ना ही किसान संगठनों की तरफ से।
ये थे आज तक रेडियो के रिपोर्टर कुमार कुणाल।
आप
सुन रहे हैं आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।
कल पेश हुए बजट में हेल्थ बजट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। अखबारों में इको वैक्सीन, बजट हुआ इम्यून, बजट को लगी वैक्सीन जैसी तमाम हेडिंग सुर्खियां बनी। बताया गया है कि हेल्थ बजट को 137% तक बढ़ाया गया, यानी 94,452 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,24,000 करोड़ कर दिया गया। सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। साथ ही 35,400 करोड़ रुपए वैक्सीन पर खर्च किए जाएंगे। अब अगर देश का हेल्थ केयर सिस्टम लाचार हो तो ऐसे में ये रकम वाकई बड़ी लगती है, लेकिन आंकड़ों को गौर से देखें कि ये पैसा कैसे खर्च होगा तब असल बात सामने आती है। तो सवाल ये है कि क्या हेल्थ बजट को बढ़ाया गया है या ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी है? यही पूछा मैंने इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में डेटा जर्नलिस्ट सम्राट शर्मा से।
देखिए, इस बार का जो हेल्थ बजट है ना, ये सिर्फ हेल्थ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सरकार ने कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एलोकेशन है। हेल्थ एंड वेलबींग करके एक सेगमेंट बनाया गया जिसके अंदर जो है हेल्थ केयर को 2,23,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ऐसा ऐलान किया गया। तो ये समझना जरूरी है कि ये हेल्थ एंड वेलबींग है क्या। तो इस हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर 60,030 करोड़ रुपए का ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का भी बजट है, 2,700 करोड़ का न्यूट्रिशन का भी बजट है, 36,022 करोड़ का फाइनेंस कमीशन ग्रांट जो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए है उसका भी बजट है। तो ये सब मिलाकर हेल्थ एंड वेलबींग सेगमेंट है जिसमें 2,23,000 करोड़ का एलोकेशन है। अगर आप सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करें तो उसमें जो आवंटन है वो 73,931 करोड़ का है, और आप अगर पिछले साल का जो अगर रिवाइज बजट उठाएं तो उसमें जो आवंटन है वो 82,928 करोड़ रुपए का है, जो कि बताता है कि पिछले साल मतलब इस साल का जो रिवाइज बजट है उससे जो अगले साल का जो बजट प्रस्तावित किया गया है वो 10.8% कम है। और इंडिया टुडे की जो डेटा इंटेलिजेंस यूनिट है उसने बजट के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये पता लगाया कि अगर आप पिछले, क्योंकि देखिए रिवाइज्ड बजट है तो उसमें कई खर्चे ऐसे थे जो कि कोरोना के चक्कर में वो वन टाइम थे, है ना, तो उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो अगर आप उसे भी मद्देनजर रखते हैं और आप COVID-19 के लिए मटेरियल सप्लाई और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो वैक्सीनेशन के खर्च हैं उसे निकाल भी दें तो भी जो नया बजट है वो मौजूदा वित्त वर्ष के बजट से कम है।
तो सम्राट, जैसा आपने बताया कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो बजट एलोकेट हुआ है वो इस बार 10% कम हुआ है, तो बजट के भीतर इसके मायने क्या हैं? इससे हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह प्रभावित होगा?
देखिए, बजट के अंदर इसके मायने अगर देखें तो कुछ चीजें थी जो कि सरकार को पहली बार करनी पड़ी थी कोरोना के चक्कर में, तो उसे इस वाले बजट में नहीं इंक्लूड किया गया है, उसके कारण एक मेजर पोर्शन कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले इस साल। लेकिन इसके मायने क्या है, क्योंकि ये एक अच्छा टाइम था जब भारत के हेल्थ बजट को मतलब बूस्ट किया जा सकता था, लेकिन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो कंडीशन है भारत में और कोरोना ने जिस तरह का मुहर लगाया है, बताया हमें रेलवेज में आइसोलेशन वार्ड बनाना पड़ा, आनन फानन में हमें पीपी किट्स मंगाने पड़े, तो ये हमारा स्थिति है हेल्थ केयर का। और एक सप्ताह पहले जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया था उसमें खुद इस बात का जिक्र किया गया था कि भारत में ज्यादा लोग हेल्थ केयर सुविधा को नहीं अवेल कर पाने के कारण नहीं मरते हैं बल्कि खराब हेल्थ केयर व्यवस्था के कारण मरते हैं। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी आंकड़े दिए थे कि 10,000 में हर 10,000 लोगों में 44 हेल्थ केयर वर्कर्स होने चाहिए जो कि भारत में सिर्फ 23 है। तो ये आंकड़े खुद बताते हैं कि भारत में हेल्थ केयर व्यवस्था की क्या हालत है और क्यों यहाँ पर स्पेंडिंग बढ़ाना चाहिए था। जी
तो सम्राट, इस बजट से ये तो समझ आ गया खासकर सरकार को भी कि हेल्थ केयर सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, तो इस बजट में और कौन सी चीजें छूटी हैं जो आपको लगती हैं कि होनी चाहिए थी?
मुझको लगता है कि रूरल हेल्थ केयर मिशन पे खर्च बढ़ाना चाहिए था, और क्योंकि अभी भी इंडिया में मैटरनल डेथ, अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट, ये सब आंकड़े बहुत अप्रिशिएबल नहीं है, इसलिए रूरल हेल्थ केयर मिशन पर इस बार बढ़ाना चाहिए था। क्योंकि आप आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ले लीजिए, चाहे आप कोरोना महामारी के दौर में ले लीजिए, कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ज्यादातर लाई थी वो दूर दराज के इलाकों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए लाया गया था। तो मैं यही कह सकता हूं कि इस बजट में अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी हेल्थ केयर की अगर बढ़ाई जाती तो वो काफी बेहतर होता।
ये थे डेटा जर्नलिस्ट सम्राट शर्मा।
मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ। मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।
बीजेपी की रणनीति में रथ यात्रा का रोल बहुत अहम है। 1990 में पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने पहली बार सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा की थी। 1997 में फिर आडवाणी ने, या ये कहें बीजेपी ने, आजादी के 50 साल पर स्वर्ण जयंती रथ यात्रा निकाली और इसका अच्छा खासा फायदा भी हुआ। बीजेपी पहली बार 1998 में केंद्र में गैर कांग्रेसी पार्टियों की गठबंधन सरकार बनाने में सफल रही। इसके बाद तो फिर कितनी ही रथ यात्राएं होती रहीं, सत्ता में होने के दौरान भी और जब सत्ता में नहीं थे तब भी। जाहिर है इसका लक्ष्य होता है ध्यान आकर्षित करने का, अपने पक्ष में माहौल बनाने का। अब कुछ ही महीनों में बंगाल में चुनाव है और यहां बीजेपी सत्ता हासिल करना चाहती है और उसने एक बार फिर रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई है। हालांकि ये भी पहली बार नहीं है कि जब बंगाल में रथ यात्रा बीजेपी निकालना चाह रही हो। इससे पहले भी 2018 में बीजेपी ने रथ यात्रा निकालनी चाही थी लेकिन राज्य की ममता सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। तो अब कितनी उम्मीद की जाए कि राज्य सरकार इस बार रथ यात्रा की अनुमति देगी, क्या डर है उसे और बीजेपी ने क्या तैयारियां की हैं, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे के एसोसिएट एडिटर इंद्रजीत कुंडू से, जो बंगाल की राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं।
जी हाँ, देखिए बिल्कुल, पांच क्षेत्र से, पांच जगह से पांच रथ यात्रा की सूचना कुछ दिनों में बीजेपी का करने का प्लान है यहाँ पे, जिससे वो बंगाल के 294 जो सीट है, विधानसभा सीट, हर एक क्षेत्र को कवर कर पाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 2018 में भी बीजेपी ने ये कोशिश किया था कि पश्चिम बंगाल में अपना रथ यात्रा निकाले, लेकिन तब ममता सरकार ने रथ यात्रा निकालने की जो परमिशन है वो नहीं दी थी। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि क्या इस दफा सरकार इससे राजी होगी, क्या परमिशन उनको दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जितना मेरा आकलन है, जिस तरह से मैंने देखा है तृणमूल सरकार को, मुझे नहीं लगता कि इस बार भी बीजेपी के लिए आसान होगा ये परमिशन मिलना, क्योंकि इसके लिए जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सपोर्ट चाहिए। पांच जगह से रथ निकलेंगे, उत्तरी बंगाल से, दक्षिण बंगाल से, और इसके साथ साथ सिर्फ रथ यात्रा ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे रैलीज की प्लानिंग भी चल रही है। एक एक जगह पे कहीं जेपी नड्डा आने की बात चल रही है तो कहीं अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे, तो इतने सारे बड़े बड़े नेता रहेंगे, तो ये पूरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इसके लिए जितना जरूरी है, जितना पुलिस फोर्स तैनात करने की जरूरी है, क्या वो पुलिस फोर्स इस वक्त राज्य सरकार दे पाएगी, एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और उसके साथ साथ क्या इससे कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी, क्या इसमें भड़काऊ भाषण हो सकते हैं, क्या इससे जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक जो टेंशन है, वो किसी जगह किसी ना किसी तरह से इसकी बढ़ोतरी हो सकती है। ये सब आशंकाओं को देखते हुए पिछली बार सरकार ने नहीं दिया था, क्या इस बार वो परमिशन मिलता है। हालांकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफी अलग है इस बार पिछली बार से, और शायद मैं ये एक एनालिसिस की तरफ मैं देखना चाहता हूं कि शायद अगर रथ यात्रा बीजेपी निकालती है तब बीजेपी को जरूर फायदा है, अगर रथ यात्रा नहीं निकाल सकते और राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी तब भी बीजेपी को यह फायदा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी ने इसको प्रचार किया कि किस तरह से उनको राजनीतिक जो राजनीतिक क्षेत्र में जो लड़ाई है, जो राजनीतिक कार्यक्रम है, वो करने नहीं दिया जा रहा है और इसको लेके वो बार बार तृणमूल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश जरूर कर।
अच्छा इंद्रजीत, टीएमसी से लगातार टूट हो रही है और ये टूट कहीं ना कहीं चुनावी समर को और रोमांचक बना रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से देखें तो अब तक ममता के 17 विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। इसी कड़ी में अब टीएमसी के विधायक दीपक हालदार ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, वो डायमंड हार्बर से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उनके जाने से कितना असर पड़ेगा तृणमूल कांग्रेस पर और उनके मोहभंग होने की वजह क्या है?
तो दीपक हालदार 2 दफा एमएलए रह चुके हैं डायमंड हार्बर से, लेकिन पिछले कई सालों से वो बिल्कुल उनको दरकिनार कर दिया गया था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो सोवन चैटर्जी जो कुछ साल पहले तृणमूल छोड़ के बीजेपी गए, बागी नेता थे और पूर्व मेयर हुआ करते थे कोलकाता के, उनके करीबी माने जाते हैं ये हालदार। और यही वजह है कि जब से शोवन चैटर्जी बीजेपी में गए, उसके साथ साथ उनके जितने भी अनुगामी या उनके क्लोज जितने भी लीडर हैं, उनको पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया था, दरकिनार कर दिया गया था। तो यही कारण है कि उनका ज्यादा असर अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में नहीं था। और दीपक हालदार ऐसा कोई कद्दावर नेता भी नहीं है जिनका एक बहुत बड़ा मास फॉलोइंग हो, जैसे शुभेंदु अधिकारी जैसे, उतना बड़ा एमएलए तो वो है नहीं। तो इससे तृणमूल को ज्यादा नुकसान तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, जिस तरह से राजीव बैनर्जी चले गए, वैशाली डालमिया चले गए, उसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे नेता, प्रवीण घोषाल निकल गए, तो उसी के एक नंबर आप कह सकते हैं, नंबर की बढ़ोतरी जरूर हुई है। बीजेपी को इसका जरूर एक राजनीतिक फायदा, एक मॉरल जो बूस्ट है वो तो जरूर मिलेगा, और तृणमूल के लिए बिल्कुल एक लॉस है। हालांकि तृणमूल ये दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि पार्टी में 294 जो सीट है, उन 294 सीट में वो खुद प्रार्थी हैं, वो खुद प्रत्याशी हैं, और कैंपेन स्टार कैंपेनर भी है पार्टी के लिए ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी सबसे बड़ी पोस्ट है तृणमूल कांग्रेस में, दूसरा कोई मायने नहीं रखता। तो इसीलिए ममता बनर्जी ने साफ अपना रुख कर दिया है, ये कहते हुए कि जिसको जाना है वो चले जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए एमएलए के रूप में, और शायद उनको इस बार टिकट ना मिलता, तो यही कहना है तृणमूल का।
ये थे इंडिया टुडे के एसोसिएट एडिटर इंद्रजीत कुंडू। दिन भर में अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है अमन गुप्ता, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।